તારીખ 3/6/1996 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથમાં નિજ ધર્મ અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
પ્રકાશ નિજ ધર્મ અધિકાર ચાલતા હૈ आत्मा में जो स्वभाव है वो निज धर्म उसको बोला जाता है. माइक बंद है ना?
चालू है. थोड़ी खास कर
आत्मा में जो स्वभाव है वो निज धर्म बोला जाता है. तो स्वभाव में ज्ञान दर्शन की मुख्यता होने के बावजूद भी दूसरे भी जो धर्म है वो धर्म का विवरण सत्शास्त्रों में आता है. और क्यों आता है कि इससे महिमा बढ़ती है. आत्मा के अनेक महिमावंत धर्म है उससे उसकी महिमा बढ़ती है. महिमा बढ़ाने के लिए इसका सदुपयोग होता है. इसलिए यहाँ इस ग्रंथ में भी शास्त्रकार ने कई धर्म का वर्णन किया है. जब अलग अलग धर्म की बात आती है और उसमें स्वरूप का महिमा बढ़ाने का हेतु है तो वो ठीक ही है. महिमा स्वरूप की बढ़े तो अच्छा ही है. परंतु एक जगह लाल बत्ती रखी है कि ये जो अनेक अलग अलग धर्म है तो अलग अलग धर्म अभेद में भेद डालता है. इससे क्या होता है? अभेद में भेद डालता है. पर आराधना और उपासना में अभेद की उपासना की गई है, भेद की नहीं. इसलिए ऐसे गुण भेद के माध्यम से स्वरूप की महिमा बढ़े तो अभेद स्वरूप की महिमा बढ़नी चाहिए. ये बात महिमा बढ़ाने वाले को शुरू से ही प्रथम से ही लक्ष्य में होनी चाहिए. तब तो ये यथार्थ महिमा होगी. वरना भेद प्रधानता से यथार्थता आ जाएगी. ऐसा नहीं है कि ऐसे गुणभेद स्वरूप में नहीं है. ऐसे गुणभेद कथनचित है. कथनचित इसलिए कि सर्वथा भेद रूप वस्तु नहीं तो अभेद के भेद है. इसके भेद है, एक अभेद वस्तु के भेद है, इसलिए कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है. जब कथनचित भेद और कथनचित अभेद दोनों है तो हम हमारे उपासना में दोनों को बराबरी का स्थान दे सकते हैं क्या कि नहीं? फिर से कि आत्मस्वरूप कथनचित भेद रूप है और कथनचित अभेद रूप है. पर वही वस्तु की अनेकांतता है. हमारा जो जैन दर्शन अनेकांतपने से प्रसिद्ध है अन्य मतों में भी कि जैन दर्शन अनेकांत की बात करता है. अनेकांत ऐसा होने के बावजूद भी उपासना और आराधना के विषय में अभेद की मुख्यता है और भेद की गौणता है। अभेद की मुख्यता और भेद की गौणता की भाषा और भी ऐसी हुई है शास्त्रों में, आगमों में, कि अभेद का आदर है और भेद का निषेध है। आप कहेंगे कि भेद तो वस्तु का कथनचित स्वरूप है, निषेध कैसे करते हो? सत्य का निषेध कहीं नहीं हो जाए कि नहीं, यही सम्यक है। भेद का निषेध और अभेद का आदर, यही सम्यक है। कृपालु देव ने एक बहुत सुंदर वचन लिखा है 26 के वर्ष में कि सम्यक अनेकांत भी, कैसा मिथ्या अनेकांत नहीं, सम्यक अनेकांत भी, सम्यक एकांत ऐसे निज पद के आराधन के हेतु से प्रतिपादित किया गया है। पर तभी इसके अनेकांतपना की चरितार्थता है, वरना नहीं। फिर से गुजराती में एम बात है कि सम्यक अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पद नी प्राप्ति हेतु ये उपकारी छे। आटला शब्दों पड़ा है वर्ड टू वर्ड। हिंदी में वो बात ऐसी है कि सम्यक अनेकांत भी, सम्यक एकांत ऐसा निज पद की प्राप्ति के हेतु से उपकारी है। अगर सम्यक एकांत ऐसा निज पद की प्राप्ति के सिवा सम्यक अनेकांत की चर्चा की जाए तो वो सम्यक एकांत का जो मोटिव है, जो हेतु है, उसका खून होता है और चर्चा विवाद के सिवा कुछ नहीं होगी। ऐसा भी है और वैसा भी है, ऐसा भी है और वैसा भी है, क्या फायदा इसे? वस्तु का स्वरूप समझो कि कथनचित भेद भी है, कथनचित अभेद भी है। फिर हमारा प्रयोजन, प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमें क्या करना है, या इसके पीछे जीन नीति क्या है, गुणेंद्र परमात्मा की पॉलिसी क्या है कि जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होए, ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। हम एक गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट में गया था, इसका जो डायरेक्टर था डिपार्टमेंट का, इसके नीचे पूरी ऑफिस चलती थी, सभी दूसरे नीचे के ऑफिसर, इनके नीचे क्लार्क, इनके नीचे पीयून, सब चलते थे, बहुत बड़ी ऑफिस थी। हमको एक लाइसेंस लेने का था, हमने एप्लीकेशन किया था, वो बात कोई आगे नहीं बढ़ रही थी। नीचे वाले ऑफिसर बोलते थे कि होगा नहीं आपका काम। हम बोले कि क्यों नहीं होगा, बाकायदा हमको मिलना चाहिए। जिस लाइसेंस के लिए दूसरों को मिला है वो भी इंडियन पब्लिक है, मैं भी इंडियन पब्लिक में से आया हूँ, मैं कोई फॉरेनर थोड़ी ना हूँ, हमको मिलना चाहिए। आप बड़े साहब को मिलो ना, हमारे बस की बात नहीं है। अथॉरिटी तो वो है, लाइसेंस पर साइन करने वाली अथॉरिटी तो वो है, आप इससे मिलो। हम तो वो कह सकते हैं कि आपको मिलेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, हम जाके मिले उनको कि साहब क्या बात है। तो कहे आजकल हम देते नहीं, तो ऐसी तो बात आप नहीं कर सकते, आपको नहीं देने का कौन सा अधिकार है, बाकायदा बताइए। आपको तो देने के अधिकार के लिए इस कुर्सी पर बिठाया गया है, यू हैव टू साइन, नहीं देने के लिए नहीं बिठाया आपको। तो थोड़ा बात करने का ढंग से तो थोड़ा चौंका। तो देखिए, कानून के हिसाब से आप राइट है, मैं कायदा के हिसाब से ना नहीं बोल सकता, से आपको नहीं मिलेगा, ये कायदा विरुद्ध बात है मैं जानता हूं, लेकिन गवर्नमेंट की आजकल पॉलिसी नहीं है। क्या बोला? गवर्नमेंट की आजकल नए लाइसेंस इश्यू करने की पॉलिसी नहीं है। कानून तो वही बदला नहीं है, लेकिन पॉलिसी में कुछ भी हो सकता है। अब दृष्टांत कहां अपन लागू करते हैं? फिर तो हमको मिल गया था, तुम बोलो के देखो पॉलिसी पॉलिसी वाली बात आपको, आप हमको लिख के तो दे सकते नहीं कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कायदा विरुद्ध, क्या करोगे? हमको तो चाहिए, आप क्या करोगे? तो रास्ता निकाल देंगे, समझे कि आदमी छोड़ने वाला तो नहीं, रास्ता निकाल दिया उसने कि आप ऐसा करिए वैसा करिए आपका काम हो जाएगा। ये ठीक है, काम हो गया हमारा। तो यहां भी जो वस्तु का स्वरूप है कथनचित भेद रूप और कथनचित अभेद रूप, जो वस्तु का स्वरूप है तो बाकायदा जो है सो है, उसमें कोई फेरफार नहीं है। लेकिन स्वरूप की आराधना करने में पॉलिसी को एडॉप्ट करनी पड़ती है। जब हमारा काम सिद्ध होता है तो पॉलिसी वो है कि भेद को गौण करो अभेद को मुख्य करो। ये बात इसलिए हमने अभी चर्चा में निकाली है कि हम अभी जो जिस अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं, इस अधिकार में अनेक भेद से आत्मा के गुणों की चर्चा चल रही है। तो हमारी जो नीति है इसके अनुसार हमें कहीं भेद की प्रधानता में नहीं आ जाए, अभेद की प्रधानता के लक्ष्य से ही भेद का ज्ञान करो या भेद से महिमा को बढ़ाओ, अभेद के महिमा को बढ़ाओ, भेद की महिमा को नहीं, भेद द्वारा अभेद की महिमा को बढ़ाओ। सम्यक एकांत प्रमाण ज्ञान नो विषय आखो पदार्थ है, और त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा जो अवलंबन का विषय है वो प्रमाण का विषय नहीं है, निश्चय का विषय है। खाली निश्चय नहीं का विषय आता है, इसलिए दूसरा पड़खा मैंने पर्याय वाला जो व्यवहार नहीं का पड़खा है वो उपादेय नहीं है, इसकी पर्याय की मुख्यता कभी होनी नहीं चाहिए, तो व्यवहार की मुख्यता हो जाएगी। चाहे पर्याय शुद्ध हो, संप्रदाय में तो भी वो झगड़ा चलता है हमारे तीनों संप्रदाय में कि शुभ को क्यों गौण करते हो, जबकि अध्यात्म अध्यात्म के पर्याय को भी गौण कराई है, क्योंकि वो भी एक भेद है। लेकिन वहां तक तो संप्रदाय में विषय नहीं चलता है, तो विषय की चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। तो झगड़ा वो करते हैं कि शुभ को क्यों गौण करते हैं, अगर शुभ को गौण करेंगे तो अशुभ में चला जाएगा। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, उनमें तो शुद्ध पर्याय को भी गौण की है। बनारसी दास जी का एक पद दोहराता हूं मैं कि एक जानिए एक देखिए रमी रहिए एक ठोर, एक जानिए एक देखिए रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। समल विमल तो पर्याय में होता है, त्रिकाली ध्रुव में समल विमल कोई बात नहीं है, तो पर्याय धर्म है, त्रिकाली का धर्म ही नहीं है। शुद्धि अशुद्धि त्रिकाली का धर्म नहीं है, पर्याय धर्म है। गुण को पर्याय होती है, पर गुण को कभी धर्म कहते हैं, लेकिन जो धर्म है तो गुण नहीं है। जैसे कि आत्मा है उसके अनंत गुण है, लेकिन गुण के कोई गुण नहीं होते हैं, लेकिन गुण को धर्म होते हैं। गुण के अनंत धर्म है, एक गुण के अनंत धर्म है और एक पर्याय के भी अनंत धर्म है। तो धर्म मैंने अकॉर्डिंग टू साइंस, धर्म मैंने कैरेक्टर, गुण का क्या कैरेक्टर है, पर्याय का क्या कैरेक्टर है, वस्तु का क्या कैरेक्टर है, मैंने गुण मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। नहीं, हाँ वस्तु धर्म लिया है, गुण लिए हैं, गुण की बात करते हैं, गुण की बात चलती है। इसमें क्या है, आप अपने स्वभाव रूप सर्व पदार्थ हैं, अपने स्वभाव रूप सर्व पदार्थ है, तो स्वभाव में अनंत गुण है। प्रश्न में देखो कि अपने स्वभाव रूप सर्व पदार्थ है, तो स्वभाव में क्या, अनंत गुण का समूह, उसमें सभी धर्म है, मैंने सभी सर्व पदार्थ स्वभाव रूप सर्व पदार्थ है, उसमें धर्म तो उसका निज धर्म है, आत्मा में धर्म आत्मा में है, इसलिए दर्शन ज्ञान को ही निज धर्म नहीं को। तो समाधान में क्या दिया कि स्वभाव तो सर्व समूह को ही कहने में आता है, यानी सर्व गुणों को ही स्वभाव कहने में आता है, ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आनंद स्वभाव, अस्तित्व स्वभाव, इसे सभी गुणों को स्वभाव बोला जाता है, पर एक अकेला स्वभाव बोलो तो सभी गुण उसमें आ जाते हैं, अकेला स्वभाव में सभी गुण आ जाते हैं। ऐसा है कि जहां जो अपेक्षा है वो लेनी पड़े, कभी कैरेक्टर को भी बताते हैं, कभी शक्ति को भी बताते हैं, तो जहां जो बात है वो समझ लेना चाहिए। हाँ स्वभाव तेने धर्म कहिए, हाँ सम्यक यथारूप अनंत पर्याय स्वभाव तेने धर्म कहिए, सम्यक यथारूप, वहां तो पर्याय की सम्यकता को भी धर्म कहा है, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो अपना धर्म है, और ऐसा परिणमन करने का वस्तु का स्वभाव है। एक सूक्ष्म बात जो ख्याल में है वो बता दूं, स्वभाव है वो शक्ति रूप सामर्थ्य रूप है, और उस सामर्थ्य में अपने स्वभाव अनुसार निर्विकार शुद्ध परिणमन करने का भी सामर्थ्य है, लेकिन जो परिणमन करने का सामर्थ्य है वो परिणमन नहीं है। स्वभाव जो है सो है, गुण है सो जो है सो है, उसमें शुद्ध परिणमन करने का सामर्थ्य है, लेकिन सामर्थ्य वो शुद्ध परिणमन नहीं है। शुद्ध परिणमन अलग अंग है और सामर्थ्य अलग अंग है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो वस्तु का साइंस है तो वैज्ञानिक परिस्थिति अगर स्पष्ट है तो फिर शास्त्र में कोई बात आएगी तो उसकी अपेक्षा समझ में आ जाएगी, क्योंकि शब्द मर्यादित है, धर्म को धर्म भी कहेंगे और गुण को भी धर्म कहेंगे, गुण को भी धर्म कहते हैं और धर्म को भी धर्म कहते हैं। अब ये कौन बताएगा कि यहां गुण को धर्म क्या है या धर्म को धर्म कहा है, वो कौन बताएगा, ग्रंथ तो नहीं बताएगा, तो शास्त्र नहीं बताएगा। इसके लिए सत्संग चाहिए, इसके लिए इस विषय का जानकार चाहिए कि यहां धर्म मैंने गुण कहा या धर्म मैंने धर्म कहा, धर्म मैंने प्रॉपर्टी कहा, शक्ति की बात चल रही है या कैरेक्टर की बात चल रही है। शब्द मर्यादित है, उसके अर्थ अनेक होते हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ने वाले को वो बात अपनी समझ में होनी चाहिए कि एक शब्द का 20 अर्थ होता हो सकता है। अब यहां कौन सा अर्थशास्त्रकार कहना चाहता है वो कौन कहेगा मुझे, मैं अनजाना हूं, ये मुझे कौन कहेगा, कौन समझाएगा, तो इसके लिए तो इस विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं, पारंगत होते हैं, कुशल होते हैं, कोई बता सकते हैं। जो जिस विषय के तजज्ञ होते हैं उनका ही वो काम होता है, उसमें शास्त्र कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा बोलना ऐसा लगता है कि गुण की बात चल रही है, क्योंकि स्वभाव को लेकर के बात चल रही है। अपने यहां आए थे कि परमेश्वर धर्म, वहां तक आए थे, सर्व से उत्कृष्ट है इसलिए सर्वोपरि धर्म, इसकी उत्कृष्टता, सर्व से उत्कृष्ट है इसलिए तो सर्वोपरि धर्म है। आत्मा का स्वभाव सर्वोत्कृष्ट है। कैसा हूं मैं कि सर्वोत्कृष्ट हूं, परमोत्कृष्ट हूं, मेरे स्वभाव से ही मैं ऐसा हूं, इसलिए वो विशेषण लागू पड़ता है कि मेरा स्वभाव सर्वोपरि है, यानी मेरा धर्म सर्वोपरि है। जिसका स्वभाव अनंत गुण रूप है इसलिए अनंत गुण धर्म, जिसका स्वभाव अनंत गुण रूप होने से अनंत गुण रूप धर्म भी उसमें है, और कितने गुण परस्पर विरुद्ध है इसलिए विरुद्ध धर्म को धारण करने का, विरुद्ध शक्ति रूप धर्म भी है उसमें धारण करने का, ऐसी भी बात है। इसलिए तो आत्मा के विषय में जैन दर्शन जितना समझता है इतना कोई नहीं समझता है, क्योंकि सर्वज्ञ अनुसार उसका विज्ञान हमारे आगमों में प्रतिपादित हुआ है। अन्य धर्म में कोई सर्वज्ञ तो नहीं हुए, इसलिए इसका जो पूरा विज्ञान नहीं है, जिसकी बुद्धि जहां तक पहुंची उस बुद्धि के पहुंच के अनुसार सब बात करते हैं। जबकि सर्वज्ञ भगवान बुद्धि के पार होकर के अतीन्द्रिय ज्ञान से, केवल ज्ञान से इस बात की प्रसिद्धि किया, इसलिए हमें बहुत सी बातें केवल ज्ञान अनुसार भी हमारे नॉलेज में आ गई। जैन दर्शन की सर्वोपरिता है या विशिष्टता है कि सर्वज्ञ अनुसार ही बात छद्मस्त को मिल रही है, वरना कोई चांस ही नहीं है। यहां सर्वज्ञ नहीं है तो उन बातों समझने का कोई चांस ही नहीं है, पर जब पूरा वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आता है तो कई प्रकार के मिथ्या अभिप्राय पैदा हो जाते हैं, मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं, बहुत बड़ी आपत्ति है। शुद्ध होने पर सदा ही शुद्ध स्वरूप परिणमते हैं, इसलिए शुद्ध स्वरूप परिणति धर्म है। देखो बात आई, शुद्ध स्वरूप रूप परिणमने का सामर्थ्य है, शक्ति है, उसकी बात चल रही है, परिणाम की बात नहीं चल रही है। हाँ, गुण की बात चल रही है। शुद्ध स्वरूप परिणति धर्म, तो शुद्ध स्वरूप परिणति को धर्म यहां नहीं कहना चाहते हैं। शुद्ध स्वरूप सदा ही परिणमे, ऐसा उनका सामर्थ्य है, इसलिए उसको शुद्ध स्वरूप परिणति धर्म कहते हैं। मैंने आत्मा का स्वभाव शुद्ध रूपी परिणमन करने का है, और ऐसा त्रिकाली स्वभाव है। कारण शुद्ध पर्याय में तो खाली वर्तमान लेवू है, कारण शुद्ध पर्याय मैंने वर्तमान, त्रिकाली नु वर्तमान, જે ત્રિકાળી સ્વરૂપ છે એનું અવલંબન વર્તમાનમાં થઈ શકતું હોવાને લીધે વસ્તુ ત્રિકાળી હોવા છતાં ભૂત ભવિષ્યમાં ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન ત્રણ થઈને ત્રણ કાળ છે, તીન હોકર કે તીન કાલે, લેકિન ભૂત ભવિષ્ય હમારે કામ મેં નહીં આતા, હમારે કામ મેં તો વર્તમાન હી આતા હૈ, તો વર્તમાન મેં મેં પૂર્ણ હું, શુદ્ધ હું, પૂરા કા પૂરા, એસા જો સ્વરૂપ કા વર્તમાન મૌજૂદગી હૈ ઉસકો વર્તમાન વર્તમાન કહેતે હૈ, શાસ્ત્ર ભાષા મેં ઉસકો વર્તમાન કા વર્તમાન કહેતે હૈ, યહી કારણ શુદ્ધ પર્યાય હૈ કે જિસકા અવલંબન લેતે હી કાર્ય શુદ્ધ હો જાતા હૈ, યાને અવલંબન લેને વાલી પર્યાય શુદ્ધ કાર્ય મેં પરિણમિત હો જાતી હૈ, ઇસ પ્રકાર સે શુદ્ધતા પેદા હોતી હૈ સ્વરૂપ અવલંબન સે. શુદ્ધ સ્વરૂપ પરિણતિ ધર્મ મેને ક્યા હૈ, ધર્મ મેને સ્વભાવ, તો શુદ્ધ સ્વરૂપ પરિણામ હોવે એસા હિ સ્વભાવ માને ગુણ હૈ, મને શક્તિ હૈ, ત્રિકાલી શક્તિ એસી હૈ, આત્મા મેં અનંત શક્તિયાં હૈ, ઉસમે એક શક્તિ એસી હૈ કે આત્મા અપને શુદ્ધ સ્વરૂપ હિ પરિણમન કરે, લેકિન શક્તિ શક્તિ હૈ ઓર પરિણમન વ્યક્તિ હૈ, શક્તિ હૈ વો વ્યક્તિ નહીં ઓર વ્યક્તિ હૈ વો શક્તિ નહીં, શાસ્ત્ર ભાષા મેં એસા બોલા જાતા હૈ કે ગુણત્વ હૈ વો પર્યાયત્વ નહીં હૈ ઓર પર્યાયત્વ હૈ વો ગુણત્વ નહીં હૈ ઓર દ્રવગુણ પર્યાય તીનો મેં વો બાત લાગુ હોતી હૈ. ઇસ પ્રકાર સે ગુણ પર્યાય કા જો અંતર હૈ વો સમજના ચાહીએ. પૂરા પદાર્થ કા કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્યા હૈ, બંધારણ જિસકો કહેતે હૈ, તો દ્રવ્યાનુ યોગ કે અનુસાર સદગુરુ યોગ સે સમજના ચાહીએ, ક્યોંકિ દ્રવ્યાનુ યોગ અપને આપ સમજ મેં આસાન નહીં હૈ, બહોત સૂક્ષ્મ હૈ, ઇસલિયે સમજના ચાહીએ, ફિર ઉસમે હે ઉપાદે કા વિભાગ કર લે, વિવેક કર લેના ચાહીએ, તો બાતે તો સબ હૈ, સબ બાતે હોને પર ભી કુછ બાત ઉપાદેય હૈ, આદરણીય હૈ, કુછ બાત ગૌણ કરકે નિષેધ કરને યોગ્ય હૈ, પર તભી પ્રયોજન કી સિદ્ધિ હોતી હૈ. હમ દાલ મે કોકમ ડાલતે હૈ, આપકે યહાં ડાલતે નહીં માલૂમ, નહીં હમારે યહાં ડાલતે હૈ, મીઠાઈ નહીં ડાલતે, કોકમ તો ડાલતે, ખટાઈ તો ડાલતે હી, પર ખાતે વક્ત ઇસ કોકમ કો ફેંક દેતે હૈ, નિકાલ દેતે હૈ. અબ યે યે પ્રશ્ન ઉઠાઓ તો જબ ઉસકો નિકાલ દેના કહે, નિકાલ દેને કહે તો ડાલ આ ક્યો, જો યે કોકમ કો આપ ખાતે નહીં તો ફિર ડાલા ક્યો, તો ભી ઇસકી ખટ્ટાઈ કા કુછ અંશ ઉસમે મિલતા હૈ, ઇસલિયે ડાલા. એસે કે અભેદ મેં ભેદ હૈ, ઉસ ભેદ કી ચર્ચા ક્યો, કે જો ભેદ મેં ખડા હૈ, વિકલ્પ મેં ખડા હૈ, ઉસકો ભેદપૂર્વક અભેદ કી મહિમા બઢાને કા યહી રાસ્તા હૈ, દૂસરા કોઈ રાસ્તા હૈ નહીં, લેકિન ભેદ કે માધ્યમ સે ભેદ કો સાધતે નહીં હૈ, અભેદ કો સાધતે હૈ, યે પ્રેક્ટિકલ સાઇડ હૈ ઇસ વિષય, સંસાર મેં ભી યે વ્યવહાર એસે હી ચલતા હૈ, કે જબ હમ કિસી વ્યક્તિ કો યા કિસી વ્યક્તિ કો વસ્તુ કો પહેચાનતે હૈ, તબ હમ ઉનકે સબ પહેલુ કો દેખતે હૈ, ફિર તો નામ લેતે હી પૂરી વસ્તુ જ્ઞાન મેં અભેદ રૂપ સે आ जाती है कि नहीं आ जाती है। तो हमने भेद के माध्यम से वस्तु की पहचान की, तब हमारे ज्ञान में वस्तु अभेद रूप आ गई, भेद रूप नहीं आई। और एक बात और भी है कि अभेद के ज्ञान में भेद समाविष्ट हो जाते हैं। कैसे? कि कोई सम्यक दृष्टि ऐसा होता है कि जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, और अध्यात्म पद्धति से यानी अनुभव पद्धति से तो अनुभव तक पहुंच जाता है। जब ये अनुभव तक पहुंच जाता है तब उसको अभेद का अनुभव होता है, यानी अभेद का ज्ञान होता है। उनको ही द्रव्यगुण पर्याय का भेद वाला सच्चा ज्ञान होता है। यानी द्रव्यगुण पर्याय की समझ प्रमाण ज्ञान वाली कब कहलाती है? कि अनुभव होता है तब ज्ञान प्रमाण हुआ, इसके पहले ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ है, पक्ष वाला रहा। इसलिए अभेद के ज्ञान में भेद समाविष्ट है अपने आप, और यही इस सम्यक ज्ञान का एक चमत्कार है कि भेद को पढ़े बिना सीखे बिना अनुभव अभेद का करके ही भेद का ज्ञान उसको हो गया। ऐसा एक ज्ञान की विशेषता है, अध्यात्म ज्ञान की ये विशिष्टता है।
शास्त्र के जानकारों के लिए ऐसा उपदेश दिया जाता है भेद अभेद का, शास्त्र के जो जानकार है उन्हीं के लिए उपदेश है। अगर शास्त्र का जानकार नहीं है, परमात्मा उसने थे बना दिया मेरे को अनुभूति प्रकट करनी है,
प्रश्न क्या है?
मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ जो शास्त्र के बहुत जानकार है, शास्त्र के अंदर फंसे हैं, उनको भेद और अभेद के बारे में बताया जाए। जो शास्त्र का जानकारी नहीं है तो उसने तो एक ही देव बना रखा है, आपका उद्देश्य है, आपके उद्देश्य में तो शास्त्र में फंसा हुआ है उसी के लिए ही।
नहीं, उसमें क्या है, फंसा हो नहीं फंसा हो, अपना प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, अपनी योग्यता को देख करके ये सुध अपने को अपने आप आनी चाहिए। अगर अपने आप नहीं आती है तो सत्संग से दौरान तो आनी चाहिए, लेकिन सुध अपने आप आनी चाहिए सत्संग करके भी, क्योंकि ये काम अपने को करना है भीतर में, ये विवेक है कि मेरी योग्यता ऐसी है तो मुझे कैसे चलना। बहुत से साधन बोले जाते हैं, अपनी योग्यता में हमें शास्त्र पढ़ना या नहीं पढ़ना वो अपने को देखना है, और नहीं पढ़ना तो कितनी मात्रा में नहीं पढ़ना, पढ़ना तो कितनी मात्रा में पढ़ना, सर्वथा नहीं पढ़ना ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और सर्वथा पढ़ते ही रहना ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बात है, तो जो शास्त्र कम पढ़ते हो उनको भी प्रयोजनभूत विषय में अपना अभिप्राय साफ कर लेना चाहिए। अभिप्राय की भूल रहेगी तो किसी को श्रद्धा होने का, सम्यक श्रद्धा होने का अवसर नहीं आता।
સમ્યક
प्रमाण से ऐसा कहने में आता है। उसी वक्त ज्ञान प्रमाण होता है, तो उसमें प्रमाण ज्ञान से ऐसा बोला जाता है, पर नहीं से बोला जाता है तो उसमें निश्चय की प्रधानता से बोला जाता है, पर दोनों बात उसमें है। ऐसा अनेकांतिक परिणमन है वो, उसमें दोनों बात है। स्वानुभूति शुद्ध नयात्मिका है, ऐसा एक श्लोक है समय सार में। स्वानुभूति शुद्ध नयात्मिका है और 144 गाथा में यह स्वरूप अनुभव लिया है, वह प्रमाण की प्रधानता से बात लिया है। हाँ, तो निश्चय नहीं का पक्ष छुड़ा करके पक्षांतिकृत होने की बात किया है। तो जब स्वानुभव होता है तो ज्ञान प्रमाण भी होता है, और स्वानुभव में अपने एक शुद्धात्मा का ही अनुभव करने का मोटिव है जिसमें, ऐसा एक ज्ञान के निश्चय नहीं की प्रवृत्ति भी हो रही है। यानी नय भी है और प्रमाण भी है, अलबत्त नए प्रमाण बिना हो ही नहीं, तो होता ही नहीं कभी, चाहे व्यवहार नहीं हो तो भी सम्यक नहीं तो प्रमाण बिना होता ही नहीं, प्रमाण ज्ञान तो होता ही है। लेकिन प्रमाण ज्ञान होता है वहां कभी निश्चय प्रधान भी होता है, कभी व्यवहार प्रधान भी होता है। उपयोग में अभिप्राय में निश्चय प्रधान ही रहता है। ऐसी अंदर की भीतर की बातें हैं। फिर से कि जिस ज्ञान के अंश का प्रयोजन, अंश मैंने नई ज्ञान उपयोग में अपने स्वरूप का निश्चय स्वरूप को अवलंबन लेने का है, पर उस मोटिव से उस हेतु से उसकी प्रवृत्ति हुई, तो आचार्य कहेंगे कि ये स्वानुभव शुद्ध नयात्मिक है, निश्चय निश्चय स्वरूप का आश्रय हुआ, भूतार्थ निश्चय आश्रय हुआ, भूयथम वसुदेव खलु समाधि, वो बात अवलंबन आश्रय की मुख्यता से ज्ञान को एक अंश में जो मोटिव है उसको मुख्य करके कही। जब स्वानुभव होता है तो द्रवगुण पर्याय तीनों का ज्ञान होता है और पर्याय का अनुभव होता है, त्रिकाली का अवलंबन रहता है, ज्ञान प्रमाण हो गया। त्रिकाली में अनुभव नहीं और पर्याय का अवलंबन नहीं, त्रिकाली का अवलंबन और पर्याय का अनुभव का दूसरा पहलू क्या है कि पर्याय का अवलंबन नहीं और त्रिकाली का अनुभव नहीं, क्योंकि वो तो सामर्थ्य रूप है। फिर भी त्रिकाली का अवलंबन वाला ज्ञान है पर स्वसंवेदन पर्याय में उसका अनुभव वाला ज्ञान है, उसको प्रमाण ज्ञान कहने में आता है, क्योंकि द्रव्य पर्याय का युगपत ज्ञान वहां वर्तता है। इसलिए प्रमाण ज्ञान की क्या परिभाषा है कि द्रव्य पर्याय का युगपत ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से तो आपका प्रश्न है, तो प्रश्न में प्रमाण भी है तो उसमें भेद और अभेद को उल्लंघन करके प्रमाण सर्वोपरि रहता है और उसका मतलब उसका अवलंबन में अभेद का ही अवलंबन है, भेद का अवलंबन नहीं है, वो बात भी उसमें साथ में है। अगर अभेद का अवलंबन नहीं होता तो ज्ञान प्रमाण होता नहीं। इसलिए सम्यक अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसा निज पद की प्राप्ति माने अनुभव के लिए ही उपकारी है, वरना उपकारी नहीं है, सिर्फ जानकारी का विषय हो जाएगा, उपकारी नहीं रहेगा। क्योंकि हमने जान लिया कथनचित भेद भी है, कथनचित अभेद भी है, और भेदाभेद वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप कैसा, भेदाभेद, भेद और भेद भी है, अभेद भी है, जानकारी से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा तब हुआ कि अभेद का अवलंबन लिया, तब हुआ। तो ये बात पॉलिसी मैटर में जाती है, जीन नीति, उसको जीन नीति कहते हैं शास्त्र में। ये प्रयोजन वश अभिप्राय में हमेशा निश्चय को मुख्य करना और परिणमन में कभी व्यवहार को और कभी निश्चय को मुख्य करना। जब निश्चय मुख्य होता है तो व्यवहार गौण होता है, परिणमन में मैंने उपयोग में, जब व्यवहार मुख्य होता है तब निश्चय गौण होता है। वहां दृष्टांत दिया है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 आखिर की गाथा है, लास्ट पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य करते आखिर की गाथा है कि ये जीन नीति है, जिनेन्द्र की नीति है, ऐसा करके लिया है। क्या? कि जैसे छास को बलोबन करके मक्खन निकाला जाता है, वैसे जीन नीति में कभी निश्चय को के दूरी को खींचते हैं तो व्यवहार को ढीला कर देते हैं। और कभी व्यवहार को खींचते हैं तो निश्चय को ढीला करते हैं। ऐसे गोवालन जैसे मक्खन निकालते वक्त ऐसे खींचती है, एक को खींचती है तो दूसरा को ढीला करती है, इसको खींचती है तो दूसरा ढीला करती है, उस तरह से जीन नीति चली है। फिर उस तरह से मक्खन निकाला है, क्या मक्खन निकाला है कि छास को फेंक दिया, मक्खन को खा लिया, यानी स्वानुभव को प्राप्त कर लिया। ये स्वानुभव करने की बात है।
इस पोर्शन का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कभी निश्चय को मुख्य करता है तो व्यवहार को भंग करता है, कभी व्यवहार को मुख्य करता है।
जैसे कि अभी जो चलता है एक एक धर्म की बात चलती है, वहाँ व्यवहार की मुख्यता है। प्रश्न वो है कि आप स्पष्ट करिए कि कभी निश्चय को मुख्य होना, कभी व्यवहार को मुख्य होना, वो बात कैसे, उसको जरा और स्पष्ट करिए। तो जैसे अपने अधिकार वो पढ़ते हैं, अभी जो बात चल रही है इसमें एक एक धर्म की बात चल रही है तो उपयोग में व्यवहार प्रधानता है और लक्ष्य में निश्चय प्रधानता है, अभिप्राय में निश्चय प्रधानता है, क्योंकि अभेद के लक्ष्य से भेद की बात चल रही है। इस तरह से कोई गुणस्थान अनुसार का व्यवहार का उल्लंघन करता है तो मुनि का उद्देश्य का आहार नहीं होना, फिर भी कोई उद्देश्य का आहार लेते हैं या अपने लिए बनते हैं, बनवाते हैं, तो कहेंगे कि भाई ये बात मुनि के योग्य नहीं है, तो उसमें व्यवहार की प्रधानता है। वहां कोई ऐसा कहे कि आत्मा खाता नहीं, निश्चय से देखो तो आत्मा खाता नहीं है, छोड़ो इस बात को, ये उद्देश्य बिना उद्देश्य की बात ही छोड़ दो, आत्मा कहाँ खाता है तो चर्चा ही छोड़ दो, आत्मा जब खाता ही नहीं तो फिर उद्देश्य बिना उद्देश्य खाने की बात कहाँ रही। तो नहीं, व्यवहार में ऐसा नहीं चलता, व्यवहार व्यवहार के स्थान में होना ही चाहिए, वो जिन नीति है। यद्यपि व्यवहार को उल्लंघन करके निश्चय आरूढ़ होते हैं हम, तो भी व्यवहार को व्यवहार के स्थान में स्थापित करके उत्थापित करते हैं कोकम डाल करके फेंक देते हैं, ऐसी बात है। बिना स्थापित किया व्यवहार की उत्थापना नहीं होनी चाहिए। फिर से, व्यवहार को स्थापित किए बिना व्यवहार की उत्थापना नहीं होनी चाहिए, स्थापित करके ही उत्थापना होना चाहिए। ये जीन नीति है। सभी संसार का नाश होगा, परिभ्रमण का नाश तभी होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। कहते हैं कि शुद्ध होने पर सदा ही शुद्ध स्वरूप के परिणमन करता है, यानी सिद्धालय में जाता है आत्मा, फिर सदा ही शुद्ध स्वरूप परिणमन करता है तो सिद्ध होता है कि शुद्ध स्वरूप परिणमन करने का इसमें गुण है, उसमें शक्ति है, वो इसका धर्म है। अपार महिमा सहित है, इसलिए अपार महिमा धारक धर्म है, क्योंकि अपार महिमा है इसकी, तो इसमें वो भी धर्म है, इसलिए उसकी महिमा भी अपार होती है। अनंत शक्ति को धारण करता है, इसलिए अनंत शक्ति रूप धर्म है। एक साथ अनंत शक्ति को धारण करने की भी ताकत है, तो वही भी इसके एक शक्ति है, तब तो होता है, इसलिए अनंत शक्ति रूप धर्म। एक गुण के अनंत पर्याय, ऐसे अनंत गुण अनंत महिमा को धारण करते हैं, एक गुण के अनंत पर्याय होते हैं, एक गुण के अनंत पर्याय होते हैं, ऐसे गुण कितने आत्मा में, संख्या से अनंत है, इनफाइनाइट। ऐसे अनंत गुण अनंत महिमा को धारण करता है, ऐसे निधर्म के महिमा को कहां तक कहे, कितना कहेंगे, हम तो थोड़ा बहुत कह दिया, लेकिन कहां तक कहे। गुरुदेव तो एक एक शक्ति पर एक एक घंटा का प्रवचन देते थे, तीन चार शब्द में एक शक्ति की व्याख्या परिभाषा आचार्य श्री ने किया है समयसार के परिशिष्ट में, तो तीन चार शब्द के एक शक्ति का विवरण में एक घंटा, कभी दो घंटा भी चल जाता तो सुनने वाले को आश्चर्य होता कि महाराज ये तीन चार शब्द में से आप कितना निकालते हो, तो कि हमको तो उतनी महिमा आते हैं कि घंटे दो घंटे बोलते भी इससे बाहर निकलना हमारा होता नहीं है, तो हम तो ये स्वरूप की शक्ति की महिमा में डूब जाते हैं। एक दो घंटा क्या, अनंत काल उसमें डूबे रहे तो भी बाहर निकलेंगे नहीं, ऐसी महिमा है वस्तु की, ऐसा कहते थे कि बोलने से उसका पार आता, घंटा दो घंटा कहने से भी शक्ति का, एक शक्ति का भी पार नहीं आता, तो अनंत शक्ति का को कौन कह सकता है, अनंत शक्ति की महिमा कौन बोल सकता है, कोई नहीं कह सकता। ऐसी अपनी आत्मा ऐसी महिमा को धारण करता है, वो तो कोई मामूली चीज नहीं है कि हम छोटे मोटे उदय में उसको पूरी की पूरी बेच दें क्या। इतनी महिमा धारक वस्तु है कि हम सामान्य शुभ शुभ कर्म के उदय में, अभी मनुष्य में तो कितना सामान्य उदय आता है, कोई इतना बड़ा उदय नहीं है देवनार के जितना, फिर भी हम उदय की प्रधानता में अनुदय स्वरूप वस्तु को खो देते हैं, या उदय की बदली में उसको बेच देते हैं, ये हमारा बड़ा अविवेक है। क्या है? अविवेक है। जैसे कैसा कोई अविवेक करता है, तो एक आदमी के पास 1000 रुपये की नोट थी, तो वो बीड़ी पीने वाला था, तो बीड़ी का दाम तो 1000 रुपया होता नहीं, भारी से भारी सिगरेट होती तो 5-10-15-25 रुपया वाली हो सकती है। उनको ये शौक हो गया कि 1000 रुपया वाली बीड़ी मुझे पीना है, क्या, तो उसका बनाई भंगली, उसमें तंबाकू भर करके बीड़ी पीने लगा। क्या अहम भाव आया, मैं 1000 रुपया वाली बीड़ी पीता हूं, अभी हाथ में क्या आया, उसकी राख। क्या हाथ में आया, उसकी राख है वो हाथ में। तो उसने 1000 रुपया का बीड़ी पी करके विवेक किया, अविवेक किया, वो तो सामान्य दृष्टांत है। हमारी आत्मा अनंत शक्ति का धारक है। हम उदय के पीछे उसको विस्मरण करके, उसको बिल्कुल भूल करके, उसकी मुख्यता छोड़ करके उदय को उतना प्राधान्य दे देते हैं, मुख्यता कर लेते हैं, चाहे वो उदय व्यापार संबंधित हो, परिवार संबंधित हो, समाज संबंधित हो, कुछ भी संबंधित हो, कोई भी प्रसंग हो, हमारी आत्मा मुख्य है, उदय मुख्य कभी होना नहीं चाहिए। वरना वो 1000 रुपया वाली बीड़ी पीने वाला अविवेक से भी अधिक ज्यादा अविवेक है, ऐसा हो जाएगा। वस्तु के धर्म के महिमा को, निज धर्म के महिमा को कब तक कहें? एक देश निज धर्म धारण करने पर भी संसार पार हो जाता है जी। एक देश मैंने चतुर्थ गुण स्थान में स्वानुभव हुआ, वो एक देश स्वानुभव है। केवल ज्ञान का स्वानुभव सर्वदेश स्वानुभव है, क्योंकि स्वसंवेदन की मात्रा अनंतमा भाग में है, चतुर्थ गुण स्थान में, केवल ज्ञान में अनंत गुण विशेष है। एक देश धर्म धारण करने पर भी पूरा संसार कट जाता है, पार हो जाता है। क्यों? कि एक देश होते ही सर्वदेश होगा ही होगा। इसलिए जिसने एक दफे स्वानुभव किया वो संसार से पार हो जाएगा, उसको केवल ज्ञान होगा होगा और होगा। रूपालु देव ने सम्यक दर्शन को वाचा दे दी, सम्यक दर्शन बोलने लगा। क्या बोला? कि अरे जीव, अगर एक दफे भी तू मुझे ग्रहण करेगा तो तुम्हें संसार में रहने का मन होगा तो भी तुम संसार में रह पाओगे नहीं, हम तुमको घिसीट करके निर्वाण पद में ले जाएंगे। इसलिए अगर हमको अंगीकार करना है तो सोच समझ करके अंगीकार करना, पहले से ही सोच लो। हमारा संग करने से तो तुमको निर्वाण पद में आना ही पड़ेगा, संसार में तुम नहीं रह सकोगे, हम तो खींच करके ले जाएंगे। इसलिए एक देश धर्म होने पर उसका निवेदा हो जाता है। तो वो बात बिल्कुल अलग है। एक समय देश का अस्तित्व होता है, जो मौजूद होता है वो सब समय होता है। वस्तु जब एक समय है तो हमेश के लिए है, हमको तो वर्तमान का ही ज्ञान होता है मौजूदगी में। तो एक समय होता है, समय 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 लेकर के सब समय होता है। तो फिर क्या है, अवस्था भेद जरूर होती है। आज मनुष्य है, कल तिरियंज हो सकता है, ऐसी हो सकता है, तो भेद तो अवस्था का है, वस्तु का नहीं है वो बात। इसलिए ऐसा जाने, ऐसा समझना के पर धर्म से अनंत दुख, निज धर्म से अनंत सुख। इसलिए निज धर्म को धारण करके अपना परमेश्वर पद को प्रकट करो। निज धर्म की धारणा अनुभव से होती है। निज धर्म का धारण कैसे होता है? अनुभव से। गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माही, ताते अनुभव सारिखो और दूसरो नहीं। इसलिए निज धर्म का धारण अनुभव से होता है। निज धर्म होने से अनुभव हो, इसलिए अनुभव सार सिद्धि के लिए ये निज धर्म अधिकार कहा। क्यों कहा? कि अनुभव सार है और इसकी प्राप्ति के लिए ये निज धर्म अधिकार यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा ग्रंथकर्ता ने इसका हेतु अभिप्राय भी बतला दिया है।